करता है इसको समझो। एक समय में नारद ऋषि आए और स्वर्ग से पारिजात पुष्प एक लिया। बोले प्रभु हमारी एक विनती है, आपकी इन रानियों में जो 16,108 बैठी हुई हैं, इनमें जो आपको सबसे अधिक प्यारी है उनको ये फूल दे मेरे सामने। मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी सचमुच में सबसे प्रिया है। कृष्ण ने कहा आप विवाद पर फूल गए हैं, आप विवाद लगाएंगे झगड़ा करेंगे। कहीं नहीं प्रभु हमारी ये विशेष प्रार्थना है। जी किसको दूं, अभी किसी को देता हूं तो एक को नहीं दूंगा तो एक को दूंगा और बाकी 16,107 बिगड़ जाएंगे, इसलिए कुछ प्रतीक्षा कर। थोड़ी देर के बाद में जब उन्होंने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने पासी में बैठी हुई थी, एक तरफ में सत्यभामा जी, दूसरी तरफ में दाहिने तरफ में रुक्मिणी जी और बाएं तरफ में सत्यभामा जी बैठी, और कृष्ण के किस हाथ में पुरखा तो जो निकट था उसी को दे, दाहिने हाथ से दाहिने के तरफ में बैठी हुई रुक्मिणी को इस हाथ से दे दिया। किंतु साथ ही साथ में वो उठ करके फुफकार मारती हुई और वहां से पूछ और जाकर के खूब भवन में जाकर के अपने वस्त्रों को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, और खूब भवन में बैठ करके अपने गहने को सोने को सब उतार दिया, कपड़े को उतार करके मैले कपड़े ये कपड़े पहन करके अब वो भवन में सो। क्यों हुआ है
सब
यहाँ पर मान का कारण क्या है?
रुक्मिणी जी का
उत्कर्ष को देख करके असहिष्णु होने का नाम यहाँ पर यह है बैकुंठ और द्वारका अथवा अयोध्या इत्यादि, यह सब बैकुंठ के यहाँ पर। अच्छा जगत में क्या होता है, वहां तो मान हुआ, मान मैंने क्रोध क्रोध नहीं, यहाँ यहाँ वर्णन किया गया है पद्म पुराण में, यहाँ पर ये उपाख्यान है, वहां पर सत्यभामा के लिए लिखा गया है कि सत्यभामा को क्रोधम इव, क्रोध नहीं किंतु क्रोध के समान ही ये दिखाई पड़ा है। किंतु इस जगत में क्या होगा, स्वर्ग में क्या होगा, ब्रह्म लोक तक क्या होगा, क्रोध दूसरे का उत्कर्ष देकर के हम लोग सह नहीं पाते हैं, इसलिए वहां पर ये क्रोध होकर के बहुत बुरी बुरी बातों को करा देता है, जो नहीं होना चाहिए, यहां तक कि परस्पर अपनी मृत्यु को भी प्रण कर लेता है या दूसरों को मार डालता है। तो उस जगत में द्वारका में और ये है कि यहां पर दूसरे का उत्कर्ष देख करके उसको सह नहीं पाने से वहां पर क्रोध के हाथी एक रोष का भाव होता है, रोष किंतु रोष नहीं क्रोध नहीं। यहां पर देखकर के कह रहे हैं स्वरूप में सुन प्रभु, कारण यह वृंदावन क्रीड़ा लक्ष्मी नहीं अधिकार, लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं है और ये वृंदावन जाना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी को नहीं लगे, तो कोई पूछे जैसे सुभद्रा जी का और बलदेव जी का वृंदावन क्रीड़ा में अधिकार है दर्शन करने का कृष्ण के लिए, इन क्रीड़ाओं को नहीं तो फिर उनको लगे इनको क्यों नहीं लगे, कारण क्या है?
तो बहाना बनाना,
बलदेव जी को और सुभद्रा जी को लेकर के वहां पर बैठा देंगे क्योंकि ये मानेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, रात भर पहरा देंगे, दिन भर पहरा देंगे, इसलिए इनको ले जाना उचित ही नहीं है, ऐसा सोच करके बहाना बनाया और बलदेव जी को और उनको तुथाराम दिखलाने के लिए, तुथाराम बने गए क्यों, दिखलाने के लिए
दिखावट
उनको लेकर के और उनको चले गए। तो वृंदावन क्रीड़ा में लक्ष्मी का अधिकार क्यों नहीं है, इसलिए नहीं कि वहां पर उनमें ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से ऐश्वर्य लक्ष्मी और वहां वहां पर ऐश्वर्य जो होने पर भी वो माधुर्जी के द्वारा, माधुर्जी मैंने ये नहीं कि कृष्ण में कोई ऐश्वर्य नहीं रहेगा, कोई ऐश्वर्य नहीं रहेगा, भगवत्ता नहीं रहेगी, तब ये साधारण मनुष्य के समान कृष्ण हो जाए। ऐश्वर्य रहे और न रहे, न लीला कर लो, उनकी जो लीलाएं होंगी उनको कहते हैं माधुर्य। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं ब्रज में सब ऐश्वर्य पर आधारित है। गोवर्धन को धारण करना, कार्यों को दमन करना, अगासुर बकासुर ये सब नहीं, क्या है उतना को मरना, सभी ऐश्वर्य है। मथुरा में जन्म उनका होना, गोकुल में उनका जन्म होना, ये सब क्या चीजें हैं, सभी ऐश्वर्य न जाए तो भगवत्ता नहीं रहेगी, तो साधारण मनुष्य जैसे हो जाएंगे। इसलिए वहां पर ऐश्वर्य है सब, किंतु ऐश्वर्य होने पर भी नर्मिला के अनुरूप होने के कारण वो ऐश्वर्य छिप जाता है, वो दिखता नहीं है, अथवा उसमें माधुर्य का गंध मिल जाने से वो भी माधुर्य उठता है। ब्रज भगवतामृत में लिखा कृष्ण गोपियों के लिए, भाव को सुनकर के बलदेव जी के मुझसे भी जो बताया मूर्छित हो, मूर्छित होने के बाद में बलदेव जी भी मूर्छित हो, ब्रह्मा जी आए, नव वृंदावन विश्वकर्मा के द्वारा सृष्टि करा था, और कृष्ण और बलदेव को गरुड़ पर बैठा करके वहां उसमें ले गए। उसमें ठीक अभी कल यशोदा भवन बनाया गया, यशोदा जी तो है नहीं, यशोदा जी की अभी कल मूर्ति वहां पर बनाई गई, गदी मंथन कर रहे हैं ये भी दिखाया गया। गदी मंथन ऐसे ऐसे नहीं कर रही है, और वहां पर गायें खड़ी करती है, और सखा लोग बनाए गए हैं सब मूर्तियां, तो लोही मैया वहां पर है और बलदेव जी मूर्ति वहां पर, जबकि पहुंच गए वहां पर रख दिया नौ वृंदावन में, तो बलदेव जी ने कृष्ण को गले से लगाया, अरे भैया उठो उठो उठो, समय चला जा रहा है, गोवों को चराना है, गायों की प्रतीक्षा कर रही, देखो वो खड़ी है,
आगे बढ़ रही
है, जा नहीं रही है तुम्हारे लिए, अभी तो सो रहा है। कृष्ण मानो ब्रज में जैसे प्रतिदिन उठते थे वैसे ही बलदेव जी ने उनको उठाया, उन्होंने आंखों को मला मल करके, ये तो सुन योगय हो गया और विलंब हो गई, बलदेव जी बड़ी जगह जा रहे हैं, आगे तुम आ जाओ जल्दी से, किस लिए जैसे ब्रज में करते थे, उनके सामने गोपियों से और दूसरों से मिलन नहीं होगा, इसलिए इसलिए वो आगे चले। अब कृष्ण को अकेले छोड़ दिया, कृष्ण उठे देखिए भैया तो गति मंथन कर रही है और बंद बंद है और आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मेरे लिए ऐसे भाव में तन्मय होगी, आज मेरे लिए मक्खन भी नहीं दे रही, वो पीछे से जाकर के चुपचाप जैसे, और उनका देश कैसा बना दिया है, कैसी मूर्ति है किशोर दिव्य किशोर, हाथों में बंसी है, कृष्ण राज्य से बन में जाते थे ब्रज का भाव था वैसा ही ठीक, उनको कृष्ण हाथों में बंसी लेकर के, और वहां पर बलदेव जी ने थोड़ा सा मुख धो दिया था, खूब विलंब आ गया, बस यशोदा जी के मां पीछे पीछे जाकर के उसके हाथ में मक्खन रखता था, झट से ऐसे भंगी से वो चले और लिया, देख रहे थे कौन कौन, यशोदा यहां देवकी रोहिणी जी सप्तभामा रुक्मिणी उद्धव जी
पद्मा
पद्मा ये प्रधान प्रधान लोग सब देख रहे, थोड़ी देर के बाद में देख करके चमत्कित हो रहे हैं सभी, इतना सुंदर कृष्ण का, अब द्वारका में संचक्र गदा पद्म लेकर के या दो हाथों से भी हैं, और जब मुरली नहीं है मकुट नहीं है और सब नहीं है, ब्रज के भाव नहीं है, और ऐसे भंगी से चल करके ऐसे कैसे छिपते हुए गिजा करके उन्होंने मक्खन लिया, ये मैया को पसंद करते लगे और झट मां से लेकर के आगे आगे बढ़े, सखाओं से मिले गायों से मिले, और उनको लेकर के चल रहे हैं, और गोपियों से वहां पर मिले और देखा एक जगह में श्रीमती जी खड़ी हैं, देख करके बड़े प्रसन्न हो, प्रसन्न होकर के धीरे धीरे उनके समीप गए। आज आप बड़ी दुखी दिख रहे हैं, क्यों दुखी दिख रहे हैं? तो मैंने एक स्वप्न देखा, स्वप्न में मैंने क्या देखा, उनके घर मैं द्वारका में आकर के राजा हो गया हूं,
मेरा शादी कर लिया,
और ये प्रजा का सब भाव देखा छोड़ दिया हूं, और मेरे गिरे में यहां पर सभी लोग रो रहे हैं, और मैं द्वारका पहुंच करके सोलह जा रही सब महिषियों से शादी की, और नाती और लड़के नाती सब हुए, और उनको लेकर के बड़े आनंद से, तो तुम सौभाग्य हो शायद इसीलिए समझ गई, इसलिए इतना सोचना जीवन, मैं तो गया नहीं, मैं तो यही हूं, तो स्वप्न था, और उस स्वप्न की बात को जान करके तुम ऐसे कर लिया क्या करते झट, बड़े भाव और भंगी से उनको जाकर के थोड़ी ना हाथ लगाया और प्रेम से उनसे मिले। उस दृश्य को देख करके देवकी जी के स्तन से दूध निकलने लगा, बात समझा, और उचमी एकदम मोहित हो गई, सत्यभामा और पद्मा तक उनको मिलने के लिए तो एकदम काम भाव से, एक को पकड़ लिया उद्धव जी ने, किसको, पद्मा जी को, और उन्हीं मैया ने न किसने सत्यभामा जी को पकड़ लिया, ऐसा भाव द्वारका में कभी नहीं देखा उन लोगों, ये भाव कहीं द्वारका में संभव है, अभी भी ये सब क्रीड़ाएं वहां पर कर रहे हैं, कहां वहां पर, और थोड़ी देर के बाद में जब ये लीला समाप्त हो गई है दिखलाया जो वहां के द्वारका वासियों में पद्मा में भी सत्यभामा में भी कृष्ण के इस रूप को देकर के ऐसा भाव उत्पन्न हो गया। अब देवकी मैया का क्या हुआ, स्तंभ से पूछा ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, रसाभास नहीं हो सकता, इस प्रकार से कभी बाई चांस यशोदा मैया जी राधा और कृष्ण के मिलन को अपने घर में वो बनाते हुए रसोई बनाते हुए देख भी रही, उनको बड़ी प्रसन्नता उनका दूध ये बासल जरूर पड़ता है कृष्ण की लीलाओं में ऐसा, और दूसरों को क्या होगा, जो जैसा सखा लोग हैं क्या होगा, उनके सखरस की वृद्धि होगी, एक अद्भुत बात है, और गोपियों को क्या होगा, उनको प्रेम के परम से उनको उसी प्रकार की मुक्ति, सर्व कहे सुन प्रभु यहां कारण वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नहीं अधिकार, लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं है, अरे सत्यभामा और रुक्मिणी इत्यादि का अधिकार नहीं है, वो प्रार्थना करती हैं द्वारका लीला में, जब हमारा सौभाग्य होता तो गोपियों के कुमकुम मिश्रित कृष्ण के चरणों को कुमकुम को हम ग्रहण करके हमारा जीवन धन्य हो जाता, गोपियों की चरण की धूली की वो वंदना करती है, कुछ जरूर उत्कर्ष समझती हैं इसलिए, किंतु कभी इनका वृंदावन न अधिकार है, उद्धव जी का अधिकार है, उद्धव जी का भी अधिकार नहीं, गए तो अधिकार नहीं, नारद जी को भी अधिकार नहीं है, वृंदावन लीलाए कृष्ण सहाय गोपीगण, वृंदावन की लीलाओं में गोपियां ही उनकी सहायता, कुछ लोग क्या करते हैं कृष्ण के साथ में देवी देवताओं को भी रखते हैं, ये भक्ति से तो इसका कोई संबंध नहीं, भक्ति तत्व नहीं जानने वाला है, जहां पर गोपियों के अतिरिक्त गोपों के अतिरिक्त ब्रज लीला में किसी का अधिकार नहीं है, वहां हनुमान जी जाकर के क्या करेंगे, करेंगे हनुमान जी को रखना जरूरी सब है, शंकर जी को भी रख देंगे क्या जरूरत है, वहां पर दुर्गा जी को रख देंगे क्या जरूरत है इसकी, वहां पर वो भक्ति का कोई संबंध नहीं, नहीं जानते इसलिए होता है, जब हनुमान जी जैसे परम भक्त लोगों का उनको तो छोड़ दो, उनके भी परम आराध्य पांडव लोग हैं, और पांडव में भी सर्वश्रेष्ठ द्रौपदी जी हैं, द्रौपदी जी आ सकती हैं ब्रज में, द्वारका में जाएंगी उनका मार्ग, जहां की रानियां हैं सब आदर जत्न करती हैं, यहाँ पर नहीं आ सकते, क्यों? मैं भाव ही नहीं है तो कैसे आएंगे? इसे लक्ष्मी जी को ले जाएंगे रस भंग हो जाएगा, और जाएंगे कैसे? बेलबन में तो तपस्या की कि नजर करोड़ों वर्ष, और आज भी उनकी वो पूरी हुई कि नहीं, और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई कि नहीं, वृंदावन में पहुंची कि नहीं, संदिग्ध है। संदिग्ध माने नहीं गई, क्यों? ब्राह्मणी का अभिमान नहीं छोड़ सकती, लक्ष्मी का स्वभाव नहीं छोड़ सकती, ऐश्वर्य के भाव को छोड़ नहीं जाए तो लक्ष्मी कैसे होगी? इसलिए नहीं, गोपी बिना कृष्ण हरि के नारायण गोपियों के अतिरिक्त कोई कृष्ण का चित्तहरण नहीं कर सकता, प्रभु का अच्छा तो वो बदला रहा था, द्वारका का नाम बदला है ना, कैसे हुआ? असभी सुनता दूसरे को उत्कर्ष को देख करके उसको सहन नहीं सकते, इसे यहां पर मान हुआ वृंदावन में किस राधा की प्रतीक्षा कर रही थे, किसके लिए? कृष्ण के लिए। प्रतीक्षा करने में उनको विलंब हो जाता है, और जब आते हैं विलंब से तो इनको मान होता है, मुख करके बैठ जाती है, बातचीत नहीं करी, क्यों? इसलिए इसलिए कृष्ण की सेवा करनी है, किसी को दे करके उपकर्ष दे करके इनको नहीं हुआ, आ रहा है समझ में? दूसरे का उपकर्ष नहीं दे करके उनको मान हो गया, ऐसा नहीं, वो देखती है कृष्ण की सेवा में विलंब और व्याघात हुआ, हम इनकी सेवा नहीं कर सकी, क्यों इतना देर करके? तो कभी कभी चंद्रावली इत्यादि का नाम सुन करके सुन रहे जो वहां से आ रहे हैं तब उनको मान होता है, वहां पर इसलिए मान होता है कि ये लोग कृष्ण के हृदय की भावना को नहीं जानती, ये लोग वैसी सेवा नहीं कर सकती, कृष्ण को उससे कष्ट हो सकता है, इसलिए ऐसी चिंता करके कृष्ण के प्रति उनका मान होता है, रुक्मिणी
चंद्रावली के प्रति नहीं,
चंद्रावली इत्यादि के प्रति उनका मान नहीं होता, क्यों? कृष्ण की राधा जी की मूर्ति कैसी है? महाभाव स्वरूपा, कृष्ण की समस्त सेवाओं की जितनी भी है भावना वो मूर्ति धारण करके राधा की श्रीअंगों में, कृष्ण की सेवा का अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जो कुछ बना है ना वो सब क्या चीज है? उनके हाथ अंग लय भाव आत्मा जो कुछ कहो वो क्या? कृष्ण की सेवा, महाभाव वही सेवा, उससे भी ऊपर उठ करके इत्यादि की भावना, तो वहां पर ये ऐसी ईर्ष्या कभी आ नहीं सकती है, इसलिए उनको जो मान होता है उस मान में प्रेम प्रधान अर्थात तो सेवा प्रधान होती है, कृष्ण की सेवा नहीं कर सकती इसलिए उनको कृष्ण के प्रति मान, यदि ऐसा होता ना तो किसी प्रकार से इनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते, किंतु ऐसा कहीं भी किसी जगह उदाहरण नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि गोपियों के अतिरिक्त दूसरे किसी का ऐसा भाव नहीं है जिसको देखकर के कृष्ण वशीभूत हो, इसलिए लक्ष्मी का वहां पर क्या विकास होगा? लक्ष्मी जी क्या करेंगी? लक्ष्मी जी नारायण की क्या सेवा करती है? क्या करेंगी? नारायण को भूख लगती है? नारायण को तो भूख लगती नहीं, तो उनको क्या रसोई बनाती है? रसोई बनाने का काम वहां पर हवा की जरूरत है, उनको जरूरत होती है तो वो हवा करेंगे ना क्या करें? अरे नहीं तो पैर तो पलटती है, अरे पैर नहीं पलटती, वो क्या करते हैं? पैर को रख करके मुझे कहीं दूसरी जगह ना चले जाए, बड़े चंचल है
ना, और सेवाएं तुम करते
हैं। और क्या सेवा
बताओ? स्कंद भागवत में आया वर्णन आया है कि लक्ष्मी जी नारायण के घर में झाड़ू पूछा तक लगाती
है,
ये समस्त वर्णन आया
है। तो जी कैसे होगी उनकी तो दासी दासियां कितनी कोटी कोटी हैं।
श्लोकों में वर्णन है
रियल भागवतामृत में है जब कुमार के निकालता है कि नारायण के भोजन का समय हो गया तुम जाओ, ताना कर निकाल दिया, यदि भोजन के समय तुमने वर्णन किया
है तो ऐसी सेवा नहीं है, वो बैकुंठ है ना,
क्या भोजन करेंगे? मतलब जब गोकुमा का निकाल रहे हैं
है कुछ भाव किनको ऐश्वर्य में अभी समझे का पीछे ऐश्वर्य भाव, वहां पर उनको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, उनको थकान और कहां पर टहलने जा रहे हैं, कहीं गोचारण करके आए हैं जो वो थक गए या क्या है, नारायण जी किसी से एक ग्लास पानी मांगते हैं वहां क्या सेवा? अच्छा वैकुंठ में कोई गंदा चीज होता है घर की नहीं, वहां पर धूल उड़ती है कि नहीं?
वहां तो मणिमठ पर बताया
गया कि लक्ष्मी जी झाड़ू क्या लेनी और वो तो सिंहासन पर बैठ। हाँ हो सकता है तू सेवा किंतु ऐश्वर्य पैरी से रखती हैं पकड़ करके कहीं बामन देवती हाँ न चले जाए और वो भक्त लोग उनको छल करके वहां पर रखने थे
बोली महाराज ये धरना
चाहिए बोली महाराज बोली महाराज इत्यादि। यहाँ कृष्ण को भूख लगती है थक भी जाते हैं, यहाँ पर बहुत तरह की भावना नर्वत सब लीला है। प्रभु कहे यात्रा छे कृष्ण रम सुभद्रा और बलदेव समय ये भी छल है यात्रा छे इसलिए उसको भी छल लो। गोपी संग जो तो लीला हमारे भवन है निगुर कृष्ण भाव केहू नहीं जाने केहू नहीं जाने मैंने इनके साथ में बलदेव और
नहीं जानते
और जहां पर गए हैं वहां के लोग भी नहीं जानते अतएव कृष्ण प्राप्त किसी नहीं दोष तब के लो लक्ष्मी देवी को एक लक्ष्मी देवी को तो कोई यहां का जानता बलदेव जी जाते सुभद्रा जी जाती और उनसे कुछ बात कितनी चुपड़ी लगा रहे अरे मैं गया था इनके साथ में और वहां पर ब्रज गोपियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे तो उनको छोड़ करके तब उनको रोष होना चाहिए था तो इनको तो पता नहीं है इसलिए इनको क्यों रोष हुआ तब कह लो लक्ष्मी देवी करे। जब एक दिन हो गया नहीं लौटे दूसरे दिन प्रतीक्षा करने लगी नहीं लौटे तीसरे दिन प्रतीक्षा की नहीं लौटे चौथे दिन प्रतीक्षा की तब पांचवें दिन ना पांचवी के दिन
नहीं पांचवें दिन
पांचवें दिन है गया पंचमी का दूसरे दिन
पांचवें दिन
अच्छा देख लेना आप
देखा पांचवा दिन
जैसा उस समय में तिथि बढ़ गई होगी तिथि बढ़ गई होगी तिथि बढ़ने से उसी दिन पंचमी और पांचवा दिन भी होगी
नहीं प्रभुपाद जी उन्होंने समय दिया
क्या दिया
पंचमी तिथि में नहीं पांचवा दिन में है रथ यात्रा
किंतु पंचमी कहते हैं
हाँ पांचवे दिन इसे
ठीक है कोई भी बात नहीं है नहीं वो यदि पढ़ भी गई है तो तिथि तो उसमें हो सकता है कि वो पंचमी और वो पांचवा दिन
नहीं
पढ़ गई है
पंचमी
शब्द वो भी पढ़ गया और दिन की
इसमें दिया है चेतन चेतन
कहा इसलिए कहते हैं कि जैसे जब उनको पता ही नहीं है तो इनको कोई का कोई कारण नहीं किंतु लक्ष्मी सोच रहे हैं चौथे दिन तक ये गया तो कहां गया और हमको क्यों नहीं ले गया मैं यदि जानती ये चार पांच दिन की दस दिन नहीं आएगा तो मैं भी साथ में जाती तो क्यों नहीं ले गया इसलिए और इतना दिन कैसे रह गया क्रोध का कारण यह है ये नहीं कि वृंदावन चले गए और गोपियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं उनको पता नहीं इसलिए नहीं उनको तो पता ही नहीं है स्वरूप कहे स्वरूप जी कह रहे हैं प्रेम और फिर एक और स्वभाव गंभीर औदास्य से है क्रोध भाव कांत का थोड़ा सा उदासीन भाव हो जाएगा उदासीन माने क्या ये हमको नहीं चाहते हैं उदासीनता देखने से ही उसको कुछ क्रोध का भाव आता है क्रोध भाव क्रोध का भाव यहां पर किस चीज की कमी है किस चीज की कमी है द्वारका में या वैकुंठ नहीं कहो यहां पर द्वारका ही वैकुंठ किस चीज की कमी कोई चीज की कमी नहीं रत्न से लेकर के खाने पीने की चीज से लेकर के और जितने भी चीज हो सकती है सभी यहां पर मौजूद है और फिर भी ये वृंदावन में जहां पर भी कुछ नहीं है वहां पर जाती है जाते हैं ये किस लिए या कहीं गए तो किस लिए एक लड़का है घर में खाने पीने के लिए सब कुछ है,
कोई चीज की कमी नहीं।
और वो लड़का जैसे मंगाया हमसे बिना कहे, एक चाय की दुकान पर चाय के बर्तनों को मारे, वहां से 5 रुपया उसको दिन भर में मिलता है। पिता को और माता को मालूम हुआ, वो क्या करेंगे? क्रोध होगा कि नहीं? घर में खाता पीता रहता, स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा था, किसी चीज की कमी नहीं, और यहाँ पर ये बर्तन मांज रहा है और 5 रुपया ले रहा है, और यहीं पर कहाँ कहाँ सोता है रास्ते पर, बस एक थप्पड़ दो थप्पड़ दिया और कान पकड़ सके जल्दी से उसको लिया। ये क्रोध जबकि दया का सूचक है, किंतु है तो क्रोध ही, उसको इतना स्नेह करता है, उसके लिए जितना रुपया चाहता है देता है, और वो बेचारा ऐसा करता है। इसलिए मानवीय जो होती है क्रिया होती है, अपने प्रियतम का थोड़ा सा भी यदि ये देखेंगे औदास्य भाव अपने प्रति छोड़ करके चले गए, ले नहीं गए, इसलिए वो क्रोध भाव होगा। हेन काले खटिक जहे विविधा रण सुबर्ण चौंध राचरण करे। इतने में हुआ क्या? ये कहां बात हो रही? सिंहराबाद के ऊपर में जहां से ये सब बैठे हुए हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन?
महापुरुष
महाप्रभु जी अपने गण के स्वरूप दाम इत्यादि वहां पर देखा। जब ये आने वाला है रथ, किसने कहा चंदोला? किसको कहते हैं? चार आदमी जिसको उठाते हैं उसको कहते हैं चंदोला। डोला मैंने
पालकी।
चार आदमी जिस पालकी को उठा करके लेकर के चलते उसको चंदोला। सुवर्ण फिर जवानों से जगमगाती ही वो चंदोला, और उसके ऊपर में लक्ष्मी जी दी नाना प्रकार का श्रृंगार किए हुए ठाट पाठ के साथ में श्रृंगार करके जाए। सतरामा ने श्रृंगार किया, उन्हें श्रृंगार गोपियों ने श्रृंगार किया, कृष्ण के मान के समय में श्रृंगार होता है ना, श्रृंगार उतार देना होता है, इन्होंने श्रृंगार और सब भक्त करके अपने परिकरों के हाथों में अस्त्र शस्त्र दे दिया और लेकर के चली मानो लंका पर चढ़ाई करनी है। चढ़ाई करने जा रही है। किस पर चढ़ाई कर रही है?
अपने पति के प्रति,
जगन्नाथ जी के अपने पति के प्रति ये आक्रमण है। और किसी के प्रति क्यों गया? इसलिए खोज करने के लिए चली और इस प्रकार से श्रृंगार करके थाट बाट के साथ में जौलस के साथ में होता क्या है, आधी रात के समय में उनको चार व्यक्ति उस टोले को उठाते हैं, रथ में होता है और मशाल चलता है, मशाल जला देते हैं बोतल वाला किरासन तेल उसमें, और बहुत से लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, निष्पक्ष रूप से चलते हैं, और वहां पर जाकर के जगन्नाथ जी करत पर वो डंडा बरसाती है, फिर जाकर के कपाट में धक्का देती हैं, उनको बांधती उनती हैं कुछ, अब तो वो भी नहीं होती। महाप्रभु के समय में वो होता था। हम लोग एक बार आप जगह और देख रहे थे और उनके साथ साथ गए तो देखा जी ये सब लीलाएं नहीं, देखा जी गए और मंदिर खोल दिया गया, भीतर तो गए रथ पर फिर डंडा मार दिया, भीतर में गई और दरवाजे को धक्का दिया, आप फिर नाक चना दरवाजे से निकल करके और दूसरे रास्ते से आते समय कुछ बजना भी बजता है, क्योंकि जाने के समय में भी बंद हो जाता है। इस तरह से महापुरुष के समय में इस प्रकार का हुआ था। अब जब वो आई तो इनकी वार्तालाप बंद हो गई, अब जहां तक बात नहीं थी वहीं पर खत्म हो गई। अब होने से क्या हुआ, तांबूल संपूर्ण झाड़ी व्यजन चावल सखी हाथ सप हार दिव्य भूषा मंडल अच्छे अच्छे कपड़े धारण करके पान की क्या होता है
डिबिया
चामर पंखे डंडे चांदी के छत्र ये सब लेकर के सब लोग चले। साथ दासी सप एक तो नहीं सब हाथ दिया अनेक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार क्रुद्धाया लक्ष्मी देवी आई रहा सिंह सिंह द्वार पर, और सिंह द्वार पर आने के बाद में सब लोग खड़े हुए और इसके बाद तो वहां से चला शोभा यात्रा चली। कहां गई? वहां पर सुंदर आचार माँ प्रभु जी साथ साथ गए। अब वहां जाकर के देखा क्या, जगन्नाथ ने मुख मुख जपो नृत्य बने, लक्ष्मी देवी दासी बने, करें बंधने पानी आनिया पारे, लक्ष्मी रचने चोर दंड करे जेनो लय नाना। वहां पर जाकर के जगन्नाथ जी के सेवक कुछ होते हैं और लक्ष्मी के सेवक होते हैं। जब तो हम विमला देवी के मंदिर में जाएंगे ना तो क्या देखते हैं, वहां के जितने उनके सेवक हैं वो लक्ष्मी जी के सेवक, और जगन्नाथ जी के मंदिर में परसा से आगमन करके पुजारी और जितने ये सब लोग हैं ये इनके ये सब करते। लक्ष्मी जी अपने परिक्रम के साथ में जाते हैं और वहां जाकर के गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच करके उन सबको पकड़ती हैं। किनको? जगन्नाथ जी के सेवकों जो वहां पर गुंडीचा मंदिर में सेवा कर रहे हैं, और पकड़ करके उनको कपड़े का बना हुआ
कोड़ा
कोड़ा बना देते ऐसे ऐड कर जिसे चोट की न रहे और उससे उनको मार देते पूरी तरह से पीट रहे। सबको पकड़ करके बांध करके लक्ष्मी जी के चरणों में डाल रहे हैं, ये देखिए मां, सबको मार करके पकड़ करके धरना। और जगन्नाथ जी मिलते तो क्या करते हैं, रथ को ही उन्होंने तोड़ डाला या तोड़ने की चेष्टा, और यदि जगन्नाथ जी मिल जाते तो वो तो कबाड़ बंद करके भीतर में, और यदि मिल जाते तो क्या होता, कुछ न कुछ जरूर होता है।
तोड़ने
तो
जाएंगे वापस कैसे,
और चेतन तारे करे नाम तो गादी देन फंड वचन, उनको फंड वचन से फंड वचन में तरह तरह से गाली का बोलो। लक्ष्मी संग दासी बने प्रवर्त देखिया, हंसे महाप्रभु कौन, महाप्रभु जी हंस रहे इनके भाव को देखकर, किस लिए
ऐसे मान
को ऐसा तो मान लो कि जगत में सुना नहीं काम करेगा, सचमुच में आप हंस रहे हैं ये ठीक ही बात है। ऐसा तो हमने कभी शास्त्र में नहीं देखा कि कोई मानवती मान करके अपने पति पर आक्रमण करने के लिए सुंदर सुंदर गहने कपड़े पहन करके श्रृंगार करके औरत सब जल करके और जहर मारो मारी पीठ पाठ करने के लिए उसको पकड़ने के लिए, ये तो मन का लक्षण नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं महाप्रभु जी हंस रहे हैं तो ये ठीक ही है, किंतु जगत यहां नहीं देखी सुनी नहीं आ माननीय निरुत्साहे चरित भूषण भूमि बसी लिखे लिखे नखे लिखे मलिन बदन धारण करके मुख सिर नीचा करके अपने पैरों से जमीन की ओर ये सब कर और रोती है बात नहीं करेंगे ये सब तो है, किंतु ऐसा मन तो चिगत में नहीं देखा, तो उसी के लिए कह रहे हैं प्रभु कहे कह ब्रजेर माने प्रकार स्वरूप कहे गोपीमान नदी सतथा। गोपियों का मान कैसा है, ये तो लक्ष्मी जी का देखा ऐसा तो हमने देखा नहीं कभी, मां प्रभु जी आज तो ठीक है ये तो अद्भुत मैंने देखा, अब आप ब्रज का मान को बताइए तो तब हम तुलना करके देखेंगे जब वो मान कैसा है ये मान कैसा कौन उत्तम है कौन। जैसे जैसे नदी की सत धारा मिलती है समुद्र में सुंदर बने यहाँ पर की गंगा सफा कहां थी, अभी यहाँ काशीनगर है, काशीनगर नामखाना से पहले नामखाना तो पीछे हुआ, काशीनगर में चक्रतीर्थ था वहीं पर सतधार गंगा थी करके समुद्र में, अब धीरे धीरे बढ़ते बैठते बढ़ते वो सुंदर बनता एकदम बीच में और सतधार एक दो नहीं, वैसे गोपियों का मान सतधार माने करोड़धार अनगिनत प्रकार के, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता कि कब किस सहे तू कहे तू कि नहीं रहे तू, अब उसको बता हम लोग कल और जब होगा तो उसका हम लोग वर्णन करेंगे, हम लोग इस वर्णन के सुनने के अधिकारी भी नहीं है यहां तक तो बतलाया, और भजन करते करते आप लोग इसको उपलब्धि करते थे पंचायत।